एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
हम करते हैं एक ऐसे राज की बात, विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। जीवन भर राज करेंगे, जीवन भर राज करेंगे हम यीशु मसीह के साथ। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात, विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। जाने होगा यारा, विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात, विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोतागण, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे दयालु महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमें आशीष दे, हम तेरे वचनों से सीखना चाहते हैं पिता, हमें तेरे और नज़दीक ला। मेरे हर एक श्रोतागणों के संग हो पिता, उन्हें तो तेरे वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और मेरे संग हो, तेरे आत्मा के द्वारा चला कि मैं तेरे वचनों को सही सलामत बतला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, दयाकर सुन और स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। आज हम सीखेंगे नरक क्या और कहाँ है। बेमतलब की गोलीबारी हुई जब एक छात्र ने अपने स्कूल में प्रवेश किया और अपने कई सहपाठियों को मार डाला। एक असंतुष्ट व्यक्ति जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था, अपने पूर्व रोजगार के स्थान पर घुस गया और अपने वरिष्ठ को गोली मार दी। एक माँ ने अपने दो बच्चों को अंदर लेकर अपनी कार को झील में ढकेल दिया और उन्हें डुबो दिया। कम से कम दो महाद्वीपों पर जातीय सफाई में हजारों लोगों की हत्या कर दी गई है। दो या दो से अधिक जातीय समूहों के बीच सदियों पुराने झगड़े इसका कारण है। पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और यहाँ तक कि शिशुओं को भी गोली मार दी गई है, काट दिया गया है और बलात्कार किया गया है। इन बर्बर अपराधों को मौत की सजा के साथ दंडित करना, यहाँ तक कि नृशंस रक्त हथियारों के लिए भी कई लोगों द्वारा निंदा की जाती है। मौत की सजा के खिलाफ समूह जोर जोर से विरोध करते हैं। इसे एक अमान्य मूर्ति पूजक अनुष्ठान कहते हैं। वे पूछते हैं, क्या ये हथियारे छुटकारे से परे हैं? अपराधियों को मौत की सजा देने का सबसे मानवीय तरीका क्या है? बिजली की कुर्सी? कुछ लोग सोचते हैं कि घातक दवा के साथ एक इंजेक्शन सबसे दर्द रहित होगा। दूसरों का कहना है कि फांसी से जीवन अधिक तेजी से समाप्त हो जाएगा। लेकिन मौत की सजा पर इस भावुक बहस में एक विकल्प है जिस पर कोई विचार नहीं करता है। कोई भी यह सुझाव नहीं देता है कि ठंडे खून वाले हत्यारे जिन्होंने क्रूरता से दूसरे के जीवन को समाप्त कर दिया है, मौत की यातना देकर शारीरिक पीड़ा के साथ भुगतान करते हैं। उदाहरण के लिए किसी ने भी सुझाव नहीं दिया है कि ये हत्यारे धीरे धीरे जलकर मर जाते हैं। लेकिन बहुत से नेकदिल मसीही यह मानते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता इससे भी बुरा करेगा। वे कहते हैं कि दुष्टों को अपने पापों के लिए भुगतान करने के लिए यातना दी जानी चाहिए और इससे भी बढ़कर वे परमेश्वर के निष्पादन स्थल को अंतहीन पीड़ा के स्थान के रूप में चित्रित करते हैं। दुष्टों का क्या होता है? उनका भाग्य परमेश्वर के प्रेम और न्याय में कैसे फिट बैठता है? आइए हम बाइबल से इसके बारे में जवाब तलाश करें। यीशु का अंतिम हृदय टूटना। 6000 वर्षों से परमेश्वर पुरुषों और महिलाओं से विनती कर रहा है। यह हम पढ़ते हैं इजेकियल 33 का 11 में, सारे जगत का मालिक यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहें। इजेकियल 33 का 11। जब यीशु ने क्रूस पर चिल्लाया, हे पिता उन्हें क्षमा कर दे क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, उसने अपने दुखते हुए हृदय को प्रकट किया। लुका 23:34। इसके तुरंत बाद यीशु ने अपना जीवन त्याग दिया और कुछ लोगों का मानना है एक टूटे हुए दिल से मर गया। जैसा कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना 19 का 30 और 34 में, लेकिन परमेश्वर के प्यार के इस शक्तिशाली प्रदर्शन के बाद भी कई लोग अभी भी यीशु की ओर रुख नहीं करेंगे। और जब तक पाप इस दुनिया में शासन करता है, यह मानव दुख को बढ़ाता रहेगा। इसलिए पाप का नाश होना चाहिए। परमेश्वर पाप को समाप्त करने की योजना कैसे बनाते हैं, आइए हम इसे बाइबल से पढ़ें। प्रभु का दिन आएगा, स्वर्ग एक दहाड़ के साथ गायब हो जाएगा, तत्वों को आग से नष्ट कर दिया जाएगा और पृथ्वी और उसमें सब कुछ जला दिया जाएगा। यह हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस का 3:10 में। परमेश्वर को अंतत बुराई के ब्राह्मण को शुद्ध करना चाहिए और पाप का अंत करना चाहिए। जो लोग पाप को पकड़े रहते हैं वे अंतत इस आग से नष्ट हो जाएंगे। जो इब्लिस उसके स्वर्गदूतों और पाप को हमारी दुनिया से नष्ट करने के लिए तैयार हैं। यीशु के लिए कितना हृदय विदारक समय था, क्योंकि वह उन लोगों को आग भस्म कर देता है जिन्हें बचाने के लिए वह मर गया था। नरक कब और कहां जलेगा, इसके बारे में चलिए हम बाइबल से देखते हैं। कुछ लोकप्रिय धारणाओं के विपरीत परमेश्वर के पास अब नरक नामक स्थान पर आग नहीं जलती है जहां पापी मृत्यु के बाद जाते हैं। नरक तब होता है जब यह पृथ्वी आग की झील में बदल जाती है। परमेश्वर दुष्टों को दंड देने की प्रतीक्षा करता है जब तक कि 1000 वर्षों के अंत में अंतिम न्याय नहीं हो जाता। इसे हम प्रकाशित वाक्य 20:9-15 में पढ़ते हैं। यहोवा जानता है कि धर्मी मनुष्यों को परीक्षाओं से कैसे बचाया जाए और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड के लिए कैसे रखा जाए। दूसरा पत्रस 2:9। वह इस शुद्ध अग्नि से हमारी दुनिया को भी शुद्ध करता है। वर्तमान आकाश और पृथ्वी आग के लिए आरक्षित हैं, न्याय के दिन और अधर्मी लोगों के विनाश के लिए रखे जा रहे हैं। दूसरा पत्रस 3:7। परमेश्वर ने कभी भी किसी भी मनुष्य के लिए नरक की आग में अपना जीवन समाप्त करने की योजना नहीं बनाई, लेकिन जब लोग शैतान के साथ टूटने और अपने पापों को पकड़ने से इनकार करते हैं तो उन्हें अंततः अपने विकल्पों के परिणामों को प्राप्त करना होगा। तब वह अपने बाईं ओर के लोगों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे पास से उस अनंत अग्नि में प्रस्थान करो जो शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार है। मत्ती 25:41। 1000 वर्षों के अंत में यह प्रदर्शन शैतान उसके स्वर्गदूतों और दुष्टों के न्याय में समाप्त होगा। रिकॉर्ड बुक खोले जाने के बाद जो इस महान नाटक में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका को प्रकट करती है, शैतान मृत्यु और कब्र को उन सभी के साथ फेंक देंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए थे। आग की झील में प्रकाशित वाक्य 20:14-15। अगले वचन प्रकाशित वाक्य 21:1 के अनुसार परमेश्वर द्वारा पृथ्वी को आग से पाप से शुद्ध करने के बाद वह एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी बनाता है। कब तक जलेगा यह नरक? कई विश्वासी इस विचार को स्वीकार करते हैं कि नरक की आग हमेशा के लिए रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप अनंत पीड़ा होगी। आइए बाइबल से उन वचनों को ध्यान दें जो पाप और पापियों के साथ परमेश्वर के व्यवहार का वर्णन करते हैं। वह उन लोगों को दंड देगा जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार का पालन नहीं करते हैं। उन्हें अनंत काल के विनाश का दंड दिया जाएगा और प्रभु की उपस्थिति और उसकी शक्ति के प्रताप से दूर कर दिया जाएगा। हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:8-9 में, कृपया ध्यान दें कि अनंतकालीन विनाश अनंत यातना के समान नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है एक विनाश जो हमेशा के लिए रहता है। इसका प्रभाव अनंत मृत्यु है। पत्रस ने न्याय के दिन और अधर्मी मनुष्यों के विनाश के बारे में बात की है, दूसरा पत्रस 3:7 में। पवित्र शास्त्र में स्पष्ट कथन हमें बताते हैं कि दुष्टों को नष्ट कर दिया जाएगा, विषों को काट दिया जाएगा, भजन संहिता 37:28। वे नाश हो जाएंगे, दूसरा पत्रस 2:12। वे धुएं की तरह गायब हो जाएंगे, भजन संहिता 37:20। आग उन्हें राख कम कर देगी, मलाकी 4:1-3। पाप की मजदूरी मृत्यु है। नरक में अनंत जीवन नहीं, परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है, रोमियो 6:23। नरक की आग में अंतिम दंड का उद्देश्य पाप के ब्राह्मण से छुटकारा पाना है, ना कि पाप को हमेशा के लिए संरक्षित करना। यह कल्पना करना अत्यंत कठिन है कि मसीह जो जिद्दी यरूशलेम के भाग्य पर रोया था और जिसने उन लोगों को क्षमा कर दिया था जिन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया था, वह अनंत काल तक शापित लोगों की पीड़ा को देखने में सक्षम होगा। नरक का निश्चित रूप से अंत होता है। 1000 वर्षों के अंत में परमेश्वर आकाश से आग बरसाता है और इबलिस और स्वर्गदूतों और दुष्टों को हटा देता है जो अपने पापों को पकड़े रहते हैं। आग स्वर्ग से उतरती है और उन्हें भस्म कर देती है, प्रकाशित वाक्य 20:9। यीशु के अनुसार यह आग बुझने योग्य है, मती 3:12। कोई भी फायर ब्रिगेड इसे तब तक बुझा नहीं पाएगी जब तक कि वह पूरी तरह से विनाश का अपना काम नहीं कर लेती। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि इस शुद्ध आग से वह एक नई पृथ्वी की रचना करेगा जिसमें पिछली परेशानियों को भुला दिया जाएगा और रोने की आवाज फिर कभी नहीं सुनी जाएगी, यशाया 65:16-19। पवित्र शास्त्र में अनंत का जिक्र का अर्थ कैसा है? मती 25:41 में यीशु शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार की गई अनंत आग के बारे में बात करता है। क्या यहाँ शाश्वत सुझाव देता है कि नरक हमेशा के लिए है? यहूदा 7 सदोम और अमोरा को उन लोगों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है जो अनंत आग की सजा भुगतते हैं। जाहिर है कि वे अभी भी जल नहीं रहे हैं, लेकिन आग इस अर्थ में शाश्वत थी कि इसके परिणाम स्वरूप पूर्ण विनाश हुआ। दूसरा पत्रस 2:6 में एक बार फिर हम अनंत आग के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र यह भी स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा के शहरों को जलाकर राख कर दिया और उन्हें एक उदाहरण बनाया कि अधर्मियों के साथ क्या होने वाला है। सदोम और अमोरा के अधर्मी अभी भी पीड़ा में नहीं है, वे बिल्कुल पहले राख में तब्दील हो गए हैं, और फिर भी जिस आग ने उन्हें जलाया वह अपने परिणामों में शाश्वत है। स्थाई विनाश, शाश्वत का अर्थ है स्थाई दंड, सजा नहीं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के पुस्तक ऐसी ज्वलंत प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग करती है, इसलिए इसके कुछ अंशों को गलत समझा गया है। उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य 14:11 खोए हुए लोगों के बारे में कहता है, पीड़ा का धुआं सदा के लिए उठता रहता है, या अंतहीन पीड़ा की तरह लगता है। लेकिन फिर आइए पवित्र शास्त्र को पवित्र शास्त्र की व्याख्या करने दे। निर्गमन 21:6 में कहा गया है कि एक सेवक ने अपने कान को इस तरह से खोदा कि उसे अपने स्वामी की सदा सेवा करनी है। इस मामले में हमेशा के लिए तब तक होगा जब तक नौकर का जीवन चलेगा। योना जिसने वेल के पेट में केवल 3 दिन और 3 रातें बिताई थी, मत्ती 12:40 रिपोर्ट करता है कि वह हमेशा के लिए वहां था, योना 2:6। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पतले अंधेरे में 3 दिन हमेशा के लिए लग रहा था। इसलिए हमें यह समझने के लिए सावधान रहना चाहिए कि पवित्र शास्त्र प्रतीकात्मक काव्यात्मक भाषा का उपयोग कैसे और कब करता है। आग की झील से हमेशा के लिए उठने वाला धुआं शाश्वत विनाश को व्यक्त करने का एक ज्वलंत तरीका है। प्रकाशित वाक्य 20:8 हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि झील जो आग और गंधक से जलती है दूसरी मृत्यु है, नरक का अंत होता है, दुष्ट भस्म हो जाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। नरक को क्यों होना चाहिए? आरंभ में परमेश्वर ने एक सिद्ध संसार की रचना की, लेकिन पाप अंदर आया और आपदा, क्षय और मृत्यु लाया। यदि आप किसी शाम घर लौटते हैं और पाते हैं कि आपका घर तहस नहस हो गया है, तो क्या आप इसे हमेशा के लिए इसी तरह से जिएंगे? बिल्कुल नहीं। आप गंदगी और कचरे को साफ करेंगे, जगह को ऊपर से नीचे तक साफ करेंगे, और मरम्मत से पूरे बर्बाद हुए फर्नीचर को फेंक देंगे। परमेश्वर भी ऐसा ही करेंगे। वह पाप के मलबे और प्रदूषण को हमेशा के लिए संभाल लेगा, उसके स्थान पर एक नई पृथ्वी का निर्माण करेगा। इस संसार को आग से शुद्ध करने के लिए परमेश्वर का उद्देश्य बचाए गए लोगों के रहने के लिए एक सिद्ध संसार का मार्ग तैयार करना है। आइए हम यूहन्ना 1:9 पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सभी अधर्मों से शुद्ध करने के लिए वफादार है। परमेश्वर पाप की समस्या का समाधान सभी को स्वतंत्र रूप से प्रदान करता है, लेकिन दुखद तथ्य यह है कि कुछ लोग पाप की बीमारी से चिपके रहने पर जोर देते हैं और परमेश्वर लोगों को अनंत जीवन के अपने मार्ग को चुनने के लिए मजबूर नहीं करेगा। जो लोग उसके समाधान को अस्वीकार करते हैं वे अंततः बीमारी से भस्म हो जाएंगे। नरक का कारण यह है, क्योंकि मैंने पुकारा लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया, मैं बोला लेकिन तुमने नहीं सुना, तुमने मेरी दृष्टि में बुराई की और वही चुना जो मुझे नाखुश करता है। यशायाह 65:12। अपनी पसंद से यीशु से कट जाने पर दुष्टों को पता चलेगा कि एकमात्र विकल्प अनंत मृत्यु है। खोने से हमें क्या घाटा होगा? भले ही पवित्र शास्त्र यह नहीं सिखाता है कि नरक की आग का परिणाम अंतहीन पीड़ा है, फिर भी यह हमें एक झलक देता है कि खो जाना कितना भयानक अनुभव है। दुष्ट अनंत जीवन से चुकने वाले हैं। यह महसूस करना कितना डरावना होगा कि परमेश्वर के साथ अनंत जीवन का आनंद उनके हाथों से फिसल गया है, कि वे युगों में कभी भी पूर्ण प्रेमपूर्ण संबंधों के आनंद का अनुभव नहीं करेंगे। जब मसीह को पिता से अलग करने वाले संसार के पाप के साथ क्रूस पर लटका दिया गया था, तो उसने अनंत काल तक खोए रहने की पीड़ा महसूस की होगी। जब दुष्ट अपने सामने के काले शून्य में देखते हैं, तो उन्हें केवल अनंत विनाश दिखाई देता है। उन्हें दूसरे पुनरुत्थान की आशा के बिना मरना होगा। साथ ही वे देखते हैं कि कैसे उन्होंने मसीह को समय से दूर धकेल दिया जब वह प्रेम की पहल के साथ निकट आया। अंत में वे अपने घुटनों पर गिर जाते हैं और परमेश्वर के न्याय और प्रेम को स्वीकार करते हैं, फिलिपियों 2:10-11। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बाइबल के लेखक हमें शीघ्र ही यीशु के दावों और हमारी पसंद में चुनाव करने को कहते हैं। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है, 2 Corinthians 6:1-2। मैं इससे बड़ी त्रासदी के बारे में नहीं सोच सकता हूँ कि कोई व्यक्ति यीशु के अमूल्य बलिदान को छोड़कर विनाश होकर खो जाने के विकल्प लेता है। हमारे सामने आने वाले विकल्प बिल्कुल स्पष्ट हैं। अनंत विनाश, एक अनंत काल जो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर है, या मसीह के साथ एक अनंत मित्रता जो हमारी गहरी इच्छाओं को पूरा करती है। आप अपने लिए क्या चुनते हैं? क्यों ना आज ही आप मसीह में अपने भविष्य की खोज करें। आइए हम परमेश्वर के पास आए और उसमें अपना भविष्य बनाएं। परमेश्वर आपको, हम सबों को आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान दयालु सशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें बनाया है और तू हमें पाप से बचाने के लिए उपाय बनाया है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके हम बच सकते हैं, हम पाप और नरक से बच सकते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के लिए तेरे आत्मा के द्वारा अगुवाई कर पिता, हम सबों को आशीष दे, फिर हर एक सुनने वालों को तो आशीष से परिपूर्ण कर, और विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना दया से ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।